كفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے نفس کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. نفس کی اصلاح کے حوالے سے جو اکابرین کی عبارت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جو اکابرین نے اس کی تشریح کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. کل کی مجلس میں ہم نے اس عبارت کے بارے میں گفتگو کی کہ اکابرین تصوف کا قول ہے، من عرف نفسه عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا. اس حوالے سے ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ جی، ظاہراً تو یہ تھوڑا سا انفیئر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف یہ سمجھ لے کہ میرے اندر یہ گڑبڑے ہیں اور اس کی اصلاح کوئی بھی نہیں ہوئی ہے، صرف اپنی گڑبڑوں کو اس نے پہچان لیا کہ میرے اندر یہ یہ عیب ہیں اور بڑے بڑے عیب لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اکابرین نے فرمایا نہیں، اس کو اگر اپنے عیبوں کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو اب اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے، تو یہ فیر نہیں لگ رہا، یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. اللہ کی معرفت تو اس کو نصیب ہو جس کو اصلاح نفس نصیب ہو، یعنی جس نے اپنے نفس کی بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا ہو. تو اس سوال کا جواب اکابرین نے یہی دیا کہ جو اپنے نفس کی جو اصلاح، اپنے نفس کو جو پہچاننا ہے، اپنے نفس کے اندر کی جو برائیوں کو پہچان لینے والا شخص وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کے لیے بہت ساری اصلاح بھی کی ہوگی اور بہت ساری کوششیں بھی کی ہوگی، تب جا کے یہ نفس کی اصلاح نصیب ہوتی ہے، تب جا کے یہ نفس کی معرفت نصیب ہوتی ہے. تو در حقیقت جس کو معرفت نصیب ہوگی، جو اپنے نفس کو پہچاننے والا ہوگا، وہ وہی ہوگا جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا ہوگا. اس کے بغیر انسان کو نفس کو معرفت انسان کو نفس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. اس حوالے سے ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ نفس کی معرفت نصیب نہ ہونے کی پہلی وجہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسری وجہ جو بڑی اہم وجہ کہ جو لوگ اس راستے میں قدم رکھتے ہیں، جو مشائخ سے بیعت کرتے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ یہ نفس ایک بہت بڑا دشمن ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور معمولات کرتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی سمجھ یہی آتی ہے کہ کئی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اپنے نفس کی اس بری عادت پہ قابو پا لیا ہے. اگر یہ نفس ایسا شرارتی کہ انسان اس وقت جب اس بالکل سمجھ جاتا ہے کہ جی قابو پا لیا ہے، تو اس وقت یہ نفس اپنی شرارت دکھاتا ہے. اس لیے کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ جو نفس پہ قابو کرنے والا شخص ہے، نفس کی اصلاح میں جو آگے بڑھ گیا اور نفس کی جو معرفت حاصل کر گیا، اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ نفس کسی بھی دن انسان کو پچھاڑ سکتا ہے، کسی بھی بیڈ ڈے پر، کسی بھی خراب دن پہ انسان اپنی نفس کی بات مان کر ایک ایسا کام کر بیٹھے گا اور کر لیتا ہے کہ جس پہ اس کو شرمندگی بھی ہوگی کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں. تو نفس جو ہے اس کی معرفت یہی بہت بڑی ایک چیز کہ اس نفس کے بارے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. इसीलिए हजरत उमर जैसी शख्सियत जो है वो हजरत हमजला के पास पहुंच गए कि भाई अल्लाह के नबी ने तुझे मुनाफिकीन के नाम बताए हैं, मेरा नाम तो कहीं उनमें नहीं। इसीलिए कि नफ्स की मारफत हासिल हो गई थी। नफ्स जो है ये बहुत ज्यादा शरारत करने वाली चीज, यानी जिसको यकीन भी है कि ये काफी अरसे तक मैंने इसको दबा लिया, अब इस नफ्स की बात मैं मानता ही नहीं हूं। ये ऐसा विट्टी और ऐसा समझदार और ऐसा शातिर एक चीज इंसान के अंदर अल्लाह ने रख दी है कि ये इंसान से काफी काफी अरसे बाद भी, काफी अरसे की मेहनत के बाद भी गलत काम करवा सकता। इसलिए जिसने इस नफ्स की मार्फत हासिल कर ली वो ये कभी नहीं कहेगा शुक्र है मेरी जान छूट गई इस नफ्स से, शुक्र है इस नफ्स की बीमारियां पाक हो गई। यानी जिन अल्लाह वालों को ये नेमत नसीब है उनकी जुबान से ये नहीं मिलेगा, बल्कि जिनको ये इस्लाह नफ्स की नेमत नसीब होगी उनकी जुबान से आपको यही सुनने को मिलेगा कि मुझ जैसा गुनाहगार इस दुनिया में कोई नहीं है। सुल्तान उल औलिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े अल्लाह वाले, बल्कि सुल्तान उल औलिया भी इसीलिए कहते थे कि ये अल्लाह वालों में बड़े अल्लाह वाले थे। तो बड़े अल्लाह वाले थे, शहर में कहत आया और लोग उलमा के पास गए कि जी इतने अरसे से बारिश नहीं हुई है, खाने पीने को अब कुछ नहीं रहा, तो क्या वजह है, क्या करें हम? उलमा ने कहा कि हम में कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है कि जिसकी वजह से ये बारिश रुकी हुई। ये खबर हजरत तक पहुंची तो हजरत ने ये बात सुनते ही शहर से बाहर का रुख कर लिया और शहर से बाहर जाके दुआ की कि या अल्लाह, जो तो शहर का सबसे बड़ा गुनाहगार था वो शहर से बाहर निकल आया, मेरे मालिक अपनी रहमत अब बरसा दीजिए। तो सच्ची बात यह है कि ये मशायख का यूं करना, अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार समझना, ये किसी दिखलावे की आजिज़ी की वजह से नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना किसी फॉल्स प्रीटेंस की वजह से नहीं है, इस नफ्स की मार्फत की वजह से है कि ये जो अंदर का दुश्मन है नफ्स, ये बड़े बड़े लोगों से बड़े छोटे छोटे काम करवा सकता है। इस हवाले से एक मशहूर वाकया, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिदुलसानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और बड़े हिंदुस्तान में हजरत की तरफ लोग मुतवज्जे। आपके हालात जिंदगी में लिखा है कि एक मरतबा सारी कैफियात जो कुर्ब इलाही की थी वो दिल में से खत्म हो गई, सारा जज्बा खत्म हो गया, बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। बहुत दिन तक परेशान रहे, फिर अल्लाह से मांगा दुआएं की, अल्लाह ने दिल पे खोला कि फला वक्त पे आपने के दिल में उजब आया, आपने अपने आप को बड़ा समझा, फला वक्त पे जब लोग आपकी खूब तारीफें कर रहे थे, लोग आप पर बिछे जा रहे थे, आप पर अपनी दीवानगी का इजहार कर रहे थे, आपने भी अपने आप को बड़ा समझ लिया, इसके बदले में अल्लाह ने आपसे ये सारी नेमतें छीन ली, अंदर जो उजब आ गया। बहुत तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, दिल में इल्का किया, तो इसका हल यही कि आपके इलाके में एक मदरसा है छोटे छोटे बच्चों का, जहां वो कायदा और कुरान पढ़ते हैं, उस मदरसे में तशरीफ ले जाए, वहां जाके इन छोटे बच्चों से कहें कि आपके लिए दुआ करें, तो ये कैफियत बहाल। हजरत तशरीफ ले गए मदरसे, और जब मदरसे में दाखिल हुए तो हर बंदा आपको देख कर हैरान, और कोई हाथ चूम रहा है, तो कोई रास्ता बना रहा है, तो झमगट्टा लग गया। तो लोग इस तरह से कर रहे हैं, हजरत ने फरमाया कि भाई मैं तो एक बड़े अहम काम के लिए आया हूँ, अपनी जरूरत के लिए आया हूँ, एक फरियाद लेके आया। मदरसे के असातिज़ा हैरान, तो हजरत ने फरमाया कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अगर मेरे सामने कर दिया जाए। सारे छोटे छोटे बच्चों को सामने किया गया, हजरत ने बड़ी लजाजत से उन बच्चों से कहा कि बच्चों मेरे लिए दुआ कर दो। उन बच्चों ने दुआ की, तब जाके ये कैफियत बहाल। तो इस नफ्स ने शरारत अजीबो गरीब तरीके से करनी है, और इस नफ्स की शरारत का कोई पता ही नहीं है ये कब कैसी शरारत कर दे। इसलिए मार्फत जिसको इस नफ्स की होगी वो कभी भी इस तरह से मुतमईन नजर नहीं आएगा कि शुक्र है मेरा काम हो गया, मेरे नफ्स की इसलाह हो गई। बल्कि जिसको इस नफ्स की मार्फत होगी उसको पता होगा कि इसकी शरारत होती रहती है। और ऐसा भी नहीं कि किसी शख्स की जिंदगी में शरारत बिल्कुल नहीं होगी, हर एक को ये शरारत करके दिखाएगा। तो जिसको सही तौर से इसलाह नसीब होगी, जो इस नफ्स को समझ गया होगा, उसको ये पता है कि ये नफ्स किसी को पहाड़ से उठा के बिल्कुल जमीन पे गिरा सकता है। इसलिए नफ्स की इस्लाह वाले लोगों की जुबान से ये कभी नहीं निकलेगा कि शुक्र है मेरे नफ्स की इस्लाह हो गई, बल्कि यही निकलेगा मुझ जैसा गुनाहगार, मुझ जैसा सियाहकार, मुझ जैसा बदकार कोई नहीं है, अगर मार्फत हासिल है। और ये चीजें जुबान से दिखलावे के तौर पे नहीं निकलेंगी, इसलिए निकलेंगी कि इस नफ्स ने ऐसी बदकारियां करवाई भी होती हैं कि कई मर्तबा इंसान का कौल कुछ होता है और उसका अमल फिर कुछ हो बैठता है। तो अकाबरीन का कौल और आपकी इबारत, मन आरफ नफ्सहु आरफ रब्बहु, ये बिल्कुल अपनी जगह सही और बेहतरीन कौल है। जिसको इस नफ्स की मार्फत नसीब, उसको वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत नसीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस नफ्स की इस्लाह नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह आलमीन, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सैयद अलंबिया वल मुरसलीन, اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وعليكم
ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله.
وبركاته.